अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान राहत खान। सामिन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आइए सामिन, आपको लिए चलते हैं खेलों की दुनिया में। कौमी T20 का पांचवा दिन, पाकिस्तान फेस करेगा बांग्लादेश को, ICC की नई दर्जा बंदी, मैनेजमेंट को तब्दील करने का फैसला, भारत और श्रीलंका। जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है, सभी सामीन को स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि सभी सुनने वाले खैरो आफियत से होंगे। जी सामिन, सबसे पहले आपको ताजा तीन खबर से आगाह करेंगे। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम में आज पांचवा दिन है T20 का और आज मुकाबले हो रहे हैं। लाहौर व्हाइट का मुकाबला है फैसलाबाद से, और आपको बताते चलें कि कराची व्हाइट का मुकाबला आज होगा लाहौर ब्लू से। और कुछ टाइम पहले जो है मैच को बारिश की वजह से रोक दिया गया था। जैसे ही ताजा तरीन सूरत हाल हम तक पहुंचेगी, हम अपने सामिन तक पहुंचाएंगे। जी सामिन, सबसे पहले हम बात करेंगे ICC की जो नई दर्जा बंदी आई है उस हवाले से। और ICC टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान जो है वो अभी भी सातवें नंबर पर मौजूद है। उसमें कोई भी जो है पेशरफ्त नहीं हुई है और पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और एतमाद किया गया था सरफराज अहमद पे, लेकिन टेस्ट सीरीज में कुछ खास जो है वो तब्दीली हमें नजर नहीं आई, कुछ बेहतरी नजर नहीं आई। तो तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट है उनके कैप्टन जो है वो सरफराज अहमद हैं। लगता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां जो है वो बहुत ज्यादा आयद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए सरफराज अहमद की जानिब से, तो उन्होंने भी यही कहा है कि किसी एक सीरीज से जो है इस चीज का फैसला नहीं किया जा सकता है कि कैप्टन जो है वो कामयाब है या फ्लॉप है। और मजीद जो है इनको टाइम देना चाहिए सरफराज अहमद को, कि जिस तरह से टेस्ट की जो क्रिकेट है वो काफी स्टैमिना की क्रिकेट जो है वो काउंट की जाती है, और उसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ हम आहंगी होने में और उनको उस लाइन पे लेके आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम दरकार होता है। और सरफराज अहमद जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें कामयाबी मिली है T20 में और वनडे में, वो इसी तरह टेस्ट में भी जो है वो एक कामयाब कैप्टन जो है वो बनना चाहते हैं। सामिन, आपको नंबर बताते चले आपके और हमारे राबते के जो नंबर है वो है 0519215377 9215378 9215379 9205770, यानि 0515 9215377 9215379 9215379 9215779 9205770, चारों टेलीफोन लाइन जो हैं वो आपके लिए ओपन कर दी गई हैं। जी सामिन, ICC टेस्ट रैंकिंग के हवाले से बात हो रही है और नंबर वन भारत और श्रीलंका के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जारी हो चुका है। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हैं, उनको पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैडम, आपको
जी तारिक चकवाल से कहिए, क्या कहेंगे?
जी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और नुमान भाई आज नहीं आए।
जी नुमान जो है वो कुछ ही टाइम में स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में रिमझिम का सिलसिला जारी है और कुछ ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स की वजह से नुमान खान जो है वो कहीं पर अटक गए हैं। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि कुछ टाइम में जो है वो स्टूडियो में पहुंच जाएंगे। ठीक है,
आज का सवाल क्या है?
आज का सवाल तो नुमान ही आपको बताएंगे, क्योंकि वही आपसे चैलेंज क्वेश्चन पूछा करते हैं। जैसे ही हम तक नुमान पहुंचेंगे, चैलेंज क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक हमारे साथ थे और उन्होंने नुमान के हवाले से पूछा, तो नुमान के जितने फैंस हैं उनको यही कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नुमान जो है कुछ टाइम में स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
अवली बात करो फिशिंग से।
जी कहिए, क्या कहेंगे?
जी पाकिस्तान का मैच कब हो रहे हैं?
पाकिस्तान का?
जी पाकिस्तान का दौरा किसके साथ है और कब है?
अच्छा, पाकिस्तान का दौरा किसके साथ और कब है? चलें जी कुछ ही टाइम के बाद, क्योंकि थोड़ी देर में हम शॉर्ट ब्रेक की जाने चलेंगे, जब लौट के आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है,
चलो सही है।
जी बात हो रही है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के हवाले से, और भारत और श्रीलंका जो है वो दोनों कल जो है वो एक दूसरे को फेस करेंगे, और शुरू होने वाली सीरीज के तीनों मैचेस जीतने पर जो है इन्हें पॉइंट्स मिलेंगे, वो ज्यादा पॉइंट्स ले पाएंगे। जी नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम,
कौन बात करें और कहाँ से?
जी मैं शमाली वजीरिस्तान से मतीउल्लाह बात कर रहा हूं, अलक्षाई से।
जी कहिए, क्या कहेंगे?
जी मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग में सलमान बट शामिल है या नहीं, और थोड़ा बांग्लादेश लीग का हवाल बता।
चलें ठीक है, बांग्लादेश लीग के हवाले से हम आपको कुछ ही टाइम में बताएंगे। मिसबा उल हक और शाहिद खान अफरीदी की टीमें जो हैं वो एक दूसरे के फेस टू फेस आएंगी, उस हवाले से आपको बताएंगे। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। सामिन इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब हमें चलना है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से आप सुनते हैं प्रोग्राम नया दिन, पीर से हफ्ता तक सुबह 10:05 से 11 बजे तक। इस प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं दुनिया में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात, कराची से खैबर तक वतन अजीज का हाल अहवाल, और मुल्की व बैनुल अक्वामी उमूर के माहिरीन की खुसूसी तज्जिये। आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
आ अंदलीब मिलके करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। उर्दू जबान कौम की पहचान, उर्दू अदब तहजीब सकाफत का शाहकार, कौमी यकजहती का अलमबरदार। तहजीब के रंग बिखेरने, कौमी यकजहती की अक्कासी करने और अवामी उमंगों के सुर छेड़ने के लिए रेडियो पाकिस्तान पेश करता है अदब रंग। सुनिए उर्दू अदब के सुर प्रोग्राम अदब रंग में हर इतवार की रात 10:05 से 11 बजे तक, सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल पर। गांव के चौबारे की खुशगपियों में, हुजरे के कहवे की मजलिस में, औताक में मेहमानों की हमनशीनी में, और गिदान की चाय की महफिल में रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے، بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے بار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ویلکم بیک، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام سپورٹس ورلڈ آپ سن رہے ہیں اپنی میزبان راحت خان کے ساتھ۔ 0519153779153789215379205700 یعنی کہ 0519153779215378 9215379 9205770 چاروں ٹیلی فون لائن سامعین آپ کے لیے اوپن کر دی گئی ہیں۔ کچھ بات کریں گے ہم قومی ہاکی ٹیم کے حوالے سے، اور پاکستان ہاکی ٹیم کی مسلسل جو ناقص کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ ملبہ جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ پہ ڈالا جا رہا ہے، کچھ سلیکشن کمیٹی پہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کی جو اپنی انفرادی کارکردگی ہے وہ بھی کچھ بہتر نہیں ہے، اور بہت سارے کھلاڑیوں پر بھی اس چیز کے اوپر بھی ان کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ آسٹریلیا میں اختتام پذیر ہونے والے 4 قومی ہاکی فیسٹیول میں جو 4 میچز ہیں وہ بہت زیادہ پور کارکردگی کے ساتھ جو ہے پاکستانی ٹیم نے جو ہے وہ لوز کیے ہیں، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے پی ایچ ایف کی جانب سے کہ جتنی بھی مینجمنٹ جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور ایک بار پھر سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مینجمنٹ پہ جو بھروسہ کیا گیا تھا اس طرح سے کارکردگی سامنے نہیں آئی، کچھ بہتری نہیں آئی، جس کی وجہ سے پہلے بھی یہ فیصلے کیے گئے اور اب پھر یہی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ مینجمنٹ کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ ٹیم میں جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے۔ مینجمنٹ کو تبدیل کرنے کے بعد بہتری جو ہے وہ کس طرح سے آئے گی، یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور پلیئر جو ہے اپنی اپنی انفرادی کارکردگی کیوں نہیں پیش کر پا رہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن ٹیلی فون کالز کا سلسلہ جاری ہے، نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی فتح محمد صاحب گجر خان سے کہیے، کیا کہیں گے آپ؟
میں آپ کی ٹرانسلیشن آج نہیں سن رہا ہوں، پتہ نہیں میرا لوگ انکریز آپ کے پاس آ رہا ہے۔
فتح محمد صاحب دوبارہ کہیے گا، سوری میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی۔
میں آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوں،
اچھا ریڈیو نہیں،
میں
بہت بہت شکریہ فتح محمد صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ، کہیے کیا کہیں گے؟
بس یہی ہے کہ میں عرضی دینا چاہتا تھا گوہر اسلام صاحب کو، میری آج وہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں ٹرانسمیشن نہیں سن رہا ہوں۔
ٹھیک ہے،
ہاں میری بچ شمولیت جو ہے ملتے سے سب سامعین کو سلام، اور جس اسٹاف کو بھی سلام، آپ کے ساتھ بالکل ہے تو ان کو بھی سلام دے۔
وعلیکم السلام سب کی جانب سے، فتح محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ریگولر کالر۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है और बात हो रही है हॉकी टीम के हवाले से। मैनेजमेंट को दोबारा से तब्दील करने का फैसला किया गया है और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो सख्त जहनी दबाव का शिकार हैं और बार बार तब्दीलियां जो हैं वो खिलाड़ियों में जहनी हम आहंगी पैदा नहीं कर पा रही हैं। जो तब्दीलियां हैं उसकी वजह से भी जो है कंफर्टेबल तरीके से प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पा रहे हैं और ये जो तब्दीलियों का सिलसिला है इसको जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक कुछ खास रिजल्ट जो है हमारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन तब्दीलियां शायद इस वजह से की जा रही हैं कि बार बार किसी प्लेयर को जब मौका दिया जाता है, अगर एक कांटेदार मुकाबला हो और उसके बाद आप किसी मैच को लूज कर दें तो फिर उसी टीम के ऊपर दोबारा से एतबार किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है। लेकिन बार बार एतमाद करने के बावजूद जो है रिजल्ट आपके सामने खराब से खराब पेश किया जाए तो फिर वो किस तरह से उसके ऊपर एतमाद किया जाएगा, ये भी सोचने की बात है। और अब जो है इन चीजों को खत्म करने के लिए जहनी दबाव में जो मुब्तला प्लेयर्स हैं उनको इन चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए उनको कहा गया है कि वो अपनी कारकर्दगी पर तोजो दें और इसके साथ साथ जो प्लेयर जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वही अब टीम का हिस्सा होगा। और मैनेजमेंट में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो किस हद तक आएंगी, किन किन सीट्स को जो है चेंज किया जाएगा, ये तो फैसले अभी होना बाकी हैं और उनके फैसलों के बाद रिजल्ट कैसे होगा, क्या आउट होगा, ये देखने की जरूरत है। जीरो 5192153 77 9217 5378 और 9215379 9205770 चारों टेलीफोन लाइन्स जो हैं वो आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम,
कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
राजबा जी, शहजाद बात कर रहा हूँ।
जी शहजाद साहब कहिए, क्या कहेंगे?
इस बार बात कर रहा हूँ
क्या कहेंगे?
ये अफरीदी का प्रोफाइल शामिल करे,
शाहिद खान अफरीदी।
वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का क्या हुआ?
पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं आप?
जी
चलें जी, ये भी आपको बताते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का टूर करना था लेकिन पाकिस्तान में कुछ मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वेस्ट इंडीज जो है वो आइंदा वर्ष जो है वो दौरा करेगी पाकिस्तानी सरजमीन का। और अभी जो है वेस्ट इंडीज को कुछ स्मोक का प्रॉब्लम था और इसके साथ साथ कुछ फोग का प्रॉब्लम था, उस वजह से जो है उनका टूर जो है मुअत्तल कर दिया गया है। अप्रैल और मार्च में जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगी टीम। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
लियाकत बात कर रहा हूँ।
जी कहिए, क्या कहेंगे?
जी मैं ये कहना चाहता हूँ ना।
जी जी,
आने वाला
थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा भाई।
आने वाला जो पीएसएल है उसमें कितने मैच पाकिस्तान में होंगे?
जो तीसरा एडिशन पीएसएल का हो रहा है उसमें कितने मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, ये आप पूछ रहे हैं? चल ठीक है, अभी बताते हैं आपको। पीएसएल तीसरे एडिशन की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं सामिन, और यही उम्मीद की जा रही है कि पीएसएल के जो मैचेस हैं, एक कॉलर हैं पहले उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैडम, मैं मोहम्मद जाहिद बात कर रहा हूँ, बड़ा खबर एजेंसी से।
जी मोहम्मद जाहिद, खुश आमदीद कहेंगे आपको, कहिए क्या कहेंगे?
मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पीएसएल में जो खिलाड़ी ड्राफ्ट हुए बाहर के और जो हमारे अपने खिलाड़ी के नाम बताइए जो
उनके नाम
नहीं है।
अच्छा जाहिद, उनके नाम जिस दिन ये ड्राफ्टिंग हुई थी ना तो नेक्स्ट डे आकर आपको पूरी पूरी टीम के हवाले से बताया गया था, बड़ी तफसीली बात हुई थी हमारी आप लोगों के साथ, आपने नहीं सुना?
नहीं वो नहीं, जो ड्रॉप हुए हैं।
अच्छा जो ड्रॉप हुए हैं, ठीक है
ठीक है,
यानी कि जिनको इग्नोर किया गया है टीम का हिस्सा जो नहीं है उन प्लेयर्स के हवाले से आपको बताया जाए।
मैडम बता
दिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हमारे साथ थे। सामिन भारत और श्रीलंका के हवाले से आपको बताते चलें, भारत और श्रीलंका की क्रिकेट की टीमों के दरमियान तीन टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट जो है वो कल ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें कि श्रीलंका टीम इन दिनों भारत में मौजूद है जहां वो तीन टेस्ट, तीन वनडे और तीन T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होने जा रही है उसका पहला मैच कल खेला जाएगा। एक कॉलर हैं उनको शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम,
कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
अब्दुल्ला कर रहा हूं।
जी अब्दुल्ला कहिए, क्या कहेंगे?
سر پی ایس ایل کے لیے جو لاہور کا نمبر چپکا تھا وہ ذرا اناؤنس کیجیے کہ ہم کہیں گے کل
لاہور کلندرز کی ٹیم کو شامل کیا جائے، ان کے ناموں کو اب تک پہنچایا جائے، یہی آپ کہہ رہے ہیں؟
یہی کہہ رہا ہوں.
چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لاہور کلندرز کے اسکواڈ کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں. بھارت اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل ایڈن گارڈن کولکاتہ میں کھیلا جائے گا، اور جہاں پر وہ تین ٹیسٹ اور تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کھیلیں گے. نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اختر حسین، کہیے کیا کہیں گے؟ آج تو سوال نہیں ہے.
سوال پوچھے نا ایشز میں.
جی جی.
اصل میں ایشز سیریز میں ایک ہیٹرک نہیں ہوئے، تین ہیٹرک تو مجھے کنفرم ہے.
ٹھیک ہے.
1994 میں شین وارن نے کیا تھا، 1998 میں ڈیرن گوف نے، 2010 میں پیٹر سیڈل نے. اس کے علاوہ میں نے ضیاء الرحمان ضیاء صاحب سے پوچھا، تاریخ خرید صاحب سے پوچھا، شاید اختر آسمی صاحب، بچی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 9 ہیٹرک ہوں گے ایشز سیریز میں. اس لیے میں کہتا ہوں اس دفعہ جو نعمان سوال صاحب نے جو چیلنج کوشچن پوچھا نا،
جی جی،
اس کا وہ کہہ رہے ہیں ایک ہیٹرک نہیں ہوئے، کافی ہیٹرک ہوئے ایشز سیریز.
جی بہت 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 شکریہ اختر حسین. سامع اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزیر احسن اقبال سی پیک کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست وہاں لیے چلتے ہیں.
حکومت اگر اسے ہینڈل کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ تحفظات پیدا ہوں کہ وفاقی حکومت نے ایک زون کو آگے رکھا، ایک کو پیچھے رکھا. ہم نے پہلے دن سے تمام صوبوں کو اس میں شامل کیا اور انڈسٹریل زونز کو برابر تمام صوبوں میں تقسیم کیا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ سب صوبے اپنی اسٹرینتھس کے مطابق، اپنے جو ان کے وسائل ہیں، جو ان کی کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہے، اس کے مطابق ان زونز کو ترقی دیں. اور ہمارے لیے ایک نادر موقع ہے کہ چین سے بہت بڑی تعداد میں، ایک اندازے کے مطابق 85 ملین جابز ریلوکیٹ ہوئیں گی پوری دنیا میں. کچھ فار ایسٹ ایشیا میں جا رہی ہیں، کچھ دوسرے ایشیائی ممالک میں، کچھ افریقہ میں. تو ہم بھی اس کا ایک اچھا حصہ پاکستان کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، جس سے ہماری جاب کریشن ہوگی، ہمارے ہاں ٹیکنالوجی اور انڈسٹریلائزیشن کا عمل آگے بڑھے گا. لیکن ضروری امر یہ ہے کہ ایسا کرنے میں ہمیں پروفیشنلزم کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا، چونکہ انڈسٹریل کوآپریشن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہے، یہ بزنس ٹو بزنس ہوگی. اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہوگا، اور پرائیویٹ سیکٹر تبھی آتا ہے کہ جب مارکیٹ فیزیبلٹیز، جو اس کی جو اٹریکٹیونیس ہے، اس کو صحیح طریقے سے اجاگر کیا جائے، اور وہ بزنس ماڈل ایسا ہو کہ جو ڈیفینڈ ہو سکے. اور اس کے لیے ہم نے تمام صوبوں کو کہا تھا کہ آپ بہترین کنسلٹنٹس کو انگیج کریں، اور اپنی فیزیبلٹیز بزنس ماڈل کے ساتھ بینکیبل ڈاکومنٹس کی شکل میں بنائیں، تاکہ انہیں ہم پوٹینشیل انویسٹرز کو دیں، اور وہ ان کو دیکھ کے پاکستان کی طرف اور ان زونز کی طرف راغب ہو سکیں. تو آئی ہوپ بورڈ آف انویسٹمنٹ، جو کہ اسے کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، ان کی صوبوں کے ساتھ مل کر اچھی تیاری ہوگی، اور اس موقع کے اوپر ہم ان تمام انڈسٹریل زونز کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کر پائیں گے. اسی طرح اس جے سی سی میں ہماری کوشش ہے کہ جو چھٹی جے سی سی میں فیصلے ہوئے تھے، جو پروجیکٹس ہم نے اپروو کیے تھے، ان سب پروجیکٹس کی فیزیبلٹیز، اس کی جو پروسیسز ہیں، ان کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہوئے تیزی سے آگے لے کے جائیں، تاکہ وہ بھی میٹیریلائز ہوں. چونکہ جو چھٹی جے سی سی ہے، اس نے ایک پروونشل پورٹ فولیو کو بہت ایکسپینڈ کیا تھا، جس سے سی پیک کا جو انکلوسیو ایسپیکٹ ہے کہ وہ تمام علاقوں، تمام صوبوں، بالخصوص پسماندہ علاقوں کو ترقی کے ساتھ جوڑنے میں ایک اہم سنگ میل اس کے ساتھ بنا ہے، جس میں جو مین آرٹری تھی سی پیک کی، اس کو ایکسٹینڈ ایک طرف تو کیا گیا میرپور مظفر آباد منسیرا سے، دوسری طرف گلگت چترال چکدرا سے، اور نیچے بلوچستان میں جو اس کی نوکنڈی سے سڑک تھی وہ جوائن کرے گی مین سی پیک روٹ کو، ادھر سے بلوچستان کے پسماندہ علاقے آئیں گے. اور پھر اسی طرح سندھ کے اندر بھی جو کیٹی بندر ہے، اس سے ایک نئی آلٹرنیٹ پورٹ سٹی ڈیولپ ہوگی، اور پھر اربن میس ٹرانزٹ پروجیکٹس بھی اس میں شامل تھے. یہ وہ پروجیکٹس ہیں کہ جو صوبوں کی خواہشات کے مطابق تھے، اور اس سے تمام صوبے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ساتویں جے سی سی کے لیے ہم اسی طرح جیسے ہم نے چھٹی جے سی سی پہ ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی تھی, تمام صوبوں کی ساتھ مل کر اس میں تمام صوبے ہوں گے, لیکن اس میں خاص طور پہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو بزنس سیکٹر ہے ایف پی سی سی آئی اس کو بھی شامل کیا جائے گا اس جے سی سی میں, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی آن بورڈ ہو اور کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ ہو, چونکہ بہت سارے ہمارے اینٹی سی پیک لابیز جو ہیں وہ مسلسل کوشش میں رہتی ہیں کہ بدگمانیاں پھیلائیں سی پیک کے بارے میں, جبکہ سی پیک ہمارے لیے ایک گیم چینجر ہے اور ہم بہت مشہور ہیں چین کے کہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر اس بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ان حالات میں جب کوئی $100 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. آج تو ہر کوئی قطار لگا کے پاکستان کی طرف آنا چاہتا ہے, لیکن جب چائنا نے یہ فیصلہ کیا تو کوئی $100 بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا, اور انہوں نے حقیقت میں ایک دوست ملک ہونے کا ثبوت دیا جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں یہ تمام منصوبے گوادر سے لے کے گلگت تک انشاءاللہ پورے پاکستان کو فائدہ دیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر آپ سب کو ایک بار دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ سب میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح ہم سے تعاون کریں گے اور ہم سب مل کر ساتویں جے سی سی میں سی پیک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ.
وفاقی وزیر احسن اقبال سی پیک کے حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے اسلام آباد میں, آپ نے براہ راست سنا. یہاں پہ لیتے ہیں شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن, پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات, کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال, اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام, ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ویلکم بیک, ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام سپورٹس ورلڈ. آپ سن رہے ہیں اپنی میزبان راحت خان اور نعمان خان کے ساتھ. نعمان خان اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں جی, خوش آمدید کہیں گے ہم نعمان کو کیونکہ آج انہوں نے بہت انتظار کروایا فینس کو بھی. جی نعمان
جی راحت, بالکل کھیلوں کی دنیا میں بھی آپ سب کو ہم ہمیشہ سے ہی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے جی کہ
ٹائم سے پہنچا جائے.
جی بالکل, کہ اپنے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے پروگرام کو پسند کرنے والے ہیں یقیناً سب کو ہی انتظار رہتا ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے کہ پروگرام میں جو ہے وہ کیا. جی بالکل,
کالر ہیں ایک. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ خان بھائی.
جی کہیے کون بات کریں اور کہاں سے
بات کر رہا ہوں, اور جلدی سے منجنا سے.
جی کہیے کیا کہیں گے.
نعمان کہتے ہیں.
جی نعمان.
جی بالکل بھائی, شکریہ آپ کی کال کا, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں.
نعمان بھائی, پاکستان کا نیکسٹ ٹور کب ہے؟
پاکستان کا جو نیکسٹ ٹور ہے ویسے جو ایک شیڈول ہے آئی سی سی کا, اس میں دسمبر جنوری میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کا بھی ایک ٹور موجود ہے,
لیکن ابھی حتمی شکل جو ہے وہ اس کو نہیں دی گئی, اناؤنس نہیں کیا گیا. ابھی
کنفرمیشن ہم آپ کو بتائیں گے. جی جی بتائیے. جی جی
پشاور زلمی کا اسکواڈ بتائیں.
اچھا جی پشاور زلمی کا اسکواڈ. جی بالکل آپ
نعمان, پشاور زلمی کا بھی ہم سے پوچھا گیا ہے اور لاہور کلندرز کی ٹیم کے حوالے سے بھی ہم سے پوچھا گیا ہے. بہت سارے سامعین ہیں جو میرا خیال ہے کہ ابھی انہوں نے. جی جی کہیے. جی جی
پروفائل بتائیں. ٹھیک ہے چلیں جی. آفریدی کا پروفائل, بہت ساری فرمائشیں راحت
آج اکٹھی ہو گئی ہیں, اکٹھی ہو چکی ہیں.
اور جی اس سے پہلے کہ مزید اس طرف ہم جائیں, अगर
टॉप टेन की जानिब बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि कल भी टॉप टेन जो है वो हम पेश नहीं कर सके अपने सामिन के लिए कुछ टाइम की कमी की वजह से। तो नुमान खान पहुंच चुके हैं स्टूडियो में, तो सामिन आपको लिए चलेंगे टॉप टेन की जानिब। तो आइए सुनते हैं टॉप टेन।
क्रिकेट कमेंट्री एक बहुत बड़ा आर्ट है। लम्हा ब लम्हा मैच की बदलती सूरत हाल पर अपनी आवाज के असर से उसकी कैफियत को बयान करने के हवाले से आज के हमारे टॉप टेन में हमारे साथ हैं 10 मायानास कमेंट्रेटर, जिन्हें हम और आप अक्सर कमेंट्री बॉक्स में देखते हैं। तो फिर सुनिए आज टॉप टेन में टॉप टेन कमेंट्रेटर्स। टॉप टेन में नंबर टेन पर हैं भारतीय माइक्रोफोन से जुड़े साबिका कप्तान सारुफ चंदीदास गंगोली। प्रिंस ऑफ कलकत्ता के नाम से जाने वाली गंगोली इस फहरिस्त में सबसे कम उम्र कमेंटेटर हैं। अपने जबरदस्त करियर के दौरान खेल की समझ को लफ्जों में बयान करके करोड़ों इंडियन फैंस को दिलों में घर कर गए हैं। कैप्टेंसी के दौरान जो कैफियत उन पर गुजरी उसे कॉमेंट्री में भी बयान करते हैं। इंडियन कमेंटेटर्स में अरुण लाल, रवि शास्त्री, गवस्कर, हर्षा भोगले के साथ गंगोली अपने धीमे लहजे के बायस खासे मशहूर हैं। नंबर नाइन पर है अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर, जिन्होंने अपने करियर में अरूज ही देखा। टॉप 11 के टॉप प्लेयर के खेल के सभी दीवाने, स्पीड स्विंग के साथ वेरी इजी एक्शन ने इन्हें लाजवाब शोहरत दी। माइकल होल्डिंग की आवाज ऐसी कि जो किसी बच्चे को सारी रात सोने ही न दे। भारी भरकम और रोबदार आवाज के साथ कैरेबियन कलर का तड़का लिए होल्डिंग की माइक पे गिरफ्त काफी अच्छी है। खेल के मुख्तलिफ पहलुओं को उमदगी से बयान करने वाले कैरेबियन क्लासिक का अपनी टीम के बारे में रवैया खास सख्त है। कमेंट्री के दौरान डैरन समी को अक्सर माइकल होल्डिंग तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर भी बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात का इजहार करते हैं। वो ये कहते हैं कि 2020 के हवाले से वो कभी भी इतने अच्छा प्लेयर कैरन पोलार्ड को नहीं मानते। अपने मौके पर डटे रहने वाले होल्डिंग अपने स्टाइल के बायस क्रिकेट वर्ल्ड में खासे मशहूर हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से जुड़ा ये नाम कमेंट्री के हवाले से अपनी पहचान आप है। माइकल स्लैटर, इयन हैली के साथ बॉक्स में मौजूद ये हैं मार्क टेलर। खेल की सही तस्वीर कशी करते हैं, मैच के हवाले से अपना होमवर्क सही तरीके से तैयार करते हैं और बाज औकात उलझे हुए मौजूदात पर अपनी जानिब से उसको उमदगी से बयान करते हैं। टोनी ग्रे के साथ टेलर की जोड़ी काफी अरसा शायकीन के दिलों पर राज करती रही। इन दिनों मारूफ स्पोर्ट्स चैनल से जुड़े हंसते मुस्कुराते टेलर क्रिकेट के हलकों में बहुत मशहूर हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का माजी का ये चेहरा कमेंट्री में अपना नाम बना गया है। बहुत मुख्तलिफ आवाज के साथ लहजे को खेल के हिसाब से ढालने वाले बिल लॉरी को कौन नहीं जानता। रन आउट होता प्लेयर अगर बहुत मुश्किल से क्रीज तक पहुंचे तो बेसाख्ता लॉरी कहते हैं जस्ट होम। खेल में होने वाली हलचल को अपनी जबरदस्त आवाज से ऐसा समा बांधते हैं कि सुनने वाला मसरूर हो जाता है। क्रिकेट में जहां बहुत से अल्फाज बोले जाते हैं, कमेंटेटर के ट्रेडमार्क अल्फाज भी उनकी पहचान बन जाते हैं। इट्स ऑल हैपनिंग बिल लॉरी के नाम के साथ जुड़ गया है। टोनी ग्रे के साथ लॉरी की फैंटास्टिक जोड़ी शायकी ने क्रिकेट में बेहद मकबूल रही। 33 साल रफाकत का अंजाम टोनी ग्रे की वफात के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते लॉरी ग्रे कमेंट्री बॉक्स के माहौल को बहुत जबरदस्त बना देते थे। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान की आवाज की चाशनी और अंदाज इन्हें हम अपने हम असरों से मुमताज करता है। बिल लॉरी है कमेंटेटर्स की लिस्ट में नंबर 7 पर। इंग्लिश क्रिकेट से जुड़ा ये नाम है टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 6 पर। अपने धीमे अंदाज से खेल की बारीकियों पर नजर रखते हुए टीम कैप्टन की प्लानिंग, उनकी कमजोरियों को बड़े जबरदस्त अंदाज से नाज़रीन की तरफ भेजने वाले नासिर हुसैन इंग्लिश टीम को कई मौकों पर आड़े हाथों लेते नजर आए हैं। बहुत से दिलचस्प पहलुओं पर खास नजर, बेहतरीन आवाज के साथ इस स्पोर्ट्स फील्ड में नासिर हुसैन के चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 5 पर वो नाम जो कैरेबियन क्रिकेट के लिए एक अरसे तक अपनी खिदमात सरंजाम देता रहा, माइकल होल्डिंग ही की तरह भारी भरकम वजूद के साथ जानदार आवाज लिए इयान बिशप के खेल पर बेलाग तबसरे, मैच रिपोर्ट्स, मैच में क्या होना चाहिए था क्या नहीं, ये सब आप बिशप से सुन लीजिए। खुद को पुरसकून रखते हुए अपनी आवाज में पूरा मंजर समो कर सामीर और नाजीम के दिलों तक पहुंचने वाले बिशप की कमेंट्री अपनी तरह पूरी तालीम है। कमेंट्री वर्ल्ड में बिशप अपने लबो लहजे से एक अलग दुनिया बसाए हुए है जिसमें कैरेबियन कलर के साथ साथ इंग्लिश टच भी बखूबी दिखाई देता है। नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बिग नेम चैपल ब्रादरान से इयान चैपल। इयान चैपल की कमेंट्री की खास बात उनका दलेराना अंदाज जो वो किसी भी वाकये के हवाले से बयान करने से गुरेज नहीं करते। चैपल कमेंट्री के हवाले से बाज़ोकात खासे मुतनाज़ा भी बन जाते हैं, मगर इन सब बातों से कतई नजर इयान चैपल आवाज के उतार चढ़ाव के साथ माहौल को समझते हुए शायकीन के दिलों को लुभाते हुए नजर आते हैं। मारूफ चैनल के साथ जुड़े डैशिंग पर्सनैलिटी लिए इयान चैपल का अंदाज काफी पसंद किया जाता है। और अब टॉप 3 कमेंटेटर्स खूबसूरत लबो लहजे के साथ आंखों की चमक दमक लिए अपने चेहरे से काम लेने वाले इंग्लिश कमेंटेटर डेविड लॉयड किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इंग्लिश टीम के तमाम दौरों में लॉयड की आवाज साथ होती है। खेल में माहौल को और गर्माने के लिए लॉयड अपनी वॉइस में और एक्साइटमेंट लाते हैं। सिचुएशन के लिहाज से आवाज और अंदाज को बदलने पर डेविड लॉयड को माहरीन टॉप 3 में नंबर 3 पर रेट करते हैं। इंग्लैंड के ही साबका प्लेयर माइक अथर्टन क्रिकेट के मायनास कमेंटेटर्स में से एक है। खेल पर तजिया हो, मैच का एनालिसिस, मौसम की सूरत हाल हो या फैंस का रवैया या फिर टॉस का सिक्का, अथर्टन का टॉप क्लास होना दिखाई देता है। माइक्रोफोन से नाता जोड़ने वाले अथर्टन के 7000 टेस्ट रन का तजर्बा तजिये में झलकता है। अथर्टन की कमेंट्री बहुत फ्रेश, नए अल्फाज से मुजयन और बहुत मालूमाती होती है। प्लेयर्स के रिकॉर्ड के साथ खेल का ड्रॉप सीन क्या हो सकता है वो भी आप अथर्टन से सुन सकते हैं। और नंबर 1 पर है नानर देन अदर देन मारूफ ऑस्ट्रेलियन चैनल से जुड़े अब हम में मौजूद नहीं माजी का हिस्सा बनने वाली ये मधुर आवाज है रिची बेनो की। तवील अरसे तक शायकीन को एक शहर में जकड़ने वाले रिची बहुत एक्सीलेंट रहे हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कहा जाता है बिनू से बढ़कर खेल पर तबसरा करने वाला कोई नहीं। दिलफरेब अंदाज से शायकीन को अपनी जानिब मुतवज्जो करने वाले ऑस्ट्रेलियन लेजेंड को कमेंट्री में उनकी आला खिदमात के इतराफ में ब्रेडमैन ऑफ माइक्रोफोन भी कहा जाता है। एशियज के मार्कों में जहां ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक दूसरे को आउटक्लास करने में दिखाई देते हैं, वहीं रिची बिनो का स्टाइल, गुफ्तगू का अंदाज, प्लेयर्स को मुंतखब मुखातिब करने की अदा, मैच पर मुकम्मल गिरफ्त के साथ इंतहाई माहिराना तबसरे और तजिये किंग ऑफ कमेंटेटर को एक इंतहाई मुनफरिद और आला मुकाम दे रहे हैं। मैच के रंग को और तेज करने वाली ये आवाजें क्रिकेट का सरमाया हैं। क्रिकेट वर्ल्ड में न सिर्फ ये आवाजें बहुत उम्दा मगर इनके साथ साथ और बहुत से कमेंटेटर शायकीन को एंटरटेन कर रहे हैं। इनमें रमीज राजा, हर्षा भोगले, डैनी मॉरिसन, वकार यूनुस अब भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं।
यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।
Thank you.
आ अंदलीब मिलके करें आहो जारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। उर्दू जबान कौम की पहचान, उर्दू अदब तहजीब सकाफत का शाहकार, कौमी यकजहती का अलमबरदार। तहजीब के रंग बिखेरने, कौमी यकजहती की अक्कासी करने और अवामी उमंगों के सुर छेड़ने के लिए रेडियो पाकिस्तान पेश करता है अदब रंग। सुनिए उर्दू अदब के सुर प्रोग्राम अदब रंग में हर इतवार की रात 10:05 से 11 तक सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल पर। गांव के चौबारे की खुशगपियों में, हुजरे के कहवे की मजलिस में, औताक में मेहमानों की हमनशीनी में और गिदान की चाय की महफिल में रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 7 से रात 12 तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर रिपोर्ट्स, मुजाकरे, इंटरव्यूज, हालात हाजरा पर अपने सामईन को बाखबर रखने का अहम जरिया। इस्लामाबाद से 1152 किलोहर्ट्ज पर, कराची से 649 किलोहर्ट्ज, लाहौर से 1332 किलोहर्ट्ज, पेशावर से 1260 किलोहर्ट्ज और क्वेटा से 756 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 से रात 12 तक रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
वेलकम बैक, ये रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड आप सुन रहे हैं अपनी मेजबान राहत खान नुमान खान के साथ। अच्छा, अख्तर हुसैन की कॉल हमें मौसूल हुई थी नुमान, और वो कुछ बता रहे थे सवाल के जवाब के हवाले से। तो मैं अपने सामिन को बताना चाहती हूं कि कामरान आजाद कश्मीर से जब कल प्रोग्राम में शामिल हुए थे तो उन्होंने इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो हम तक पहुंचा दिया था। ड्रैन गफ जो है वो इसके दुरुस्त जवाब है इसका 1998-1999 में जो है उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। एक कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। नुमान, आपके आने से पहले बहुत सारी खबरें हमारे सामने तक पहुंची, लेकिन एक बात फिर से मैं आप लोग आपसे शेयर करना चाहूंगी। पीएचएफ ने एक बार फिर एक नया तजर्बा करने की ठान ली। मैनेजमेंट को तब्दील करने का फैसला किया गया जो मौजूदा मैनेजमेंट है। नित नए तजर्बात हमारे सामने आपने देखे हैं कि आते हैं कौमी हॉकी टीम को, ये कौमी खेल है, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा फैसले किए जाते हैं। क्या फैसले सिर्फ एक शख्स के तब्दील होने के बाद रिजल्ट हम तक पहुंच सकता है कि मैनेजमेंट को अब फिर से चेंज कर दिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम।
जी
बात कीजिए अख्तर हुसैन जी।
नुमान भाई, एशेज सीरीज में एक हैट्रिक नहीं हुए, 3 हैट्रिक तो मुझे कंफर्म याद है। मैंने जो कल की वीडियो पे देखी है, 94 में सैन मोहन ने, मेलबोर्न ने, फिर 98 में डेवन गॉफ ने, फिर 2010 में पीटर सिडल ने, ये रिसेंटली 3 हैट्रिक है। इसके अलावा ज्यावरमान व्यास साहब ने, इससे मैंने पूछा आप दोनों पति साहब से, कई साहब से,
अच्छा,
लेकिन 9 हैट्रिक कम से कम हुए एशेज सीरीज में। नुमान भाई, यह कैसेज नहीं हुई है सर, तो
ओके, ठीक है, ठीक हो गया। चले जी, ठीक है जी, बिल्कुल। आज आपके के रिकॉर्ड्स ने जो है वो हमें चैलेंज जो था वो हमारा उससे ज्यादा बेहतर जवाब दिया। और वाकई कि इस पर शायद बाज़ोकात ऐसा होता है कि हम जब रिकॉर्ड्स को कहीं रीड कर रहे होते हैं राहत, तो ये चीजें मिस हो जाती हैं। बहल कोशिश होगी आइंदा कि इस किस्म की जो जी बिल्कुल
उसका जिक्र जरूर आज करें आखिर में।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अंडर 19 का आपको बता रहे हैं राहत। इससे पहले हम थोड़ी सी हॉकी पे अगर बात करें,
अभी हॉकी पे ही बात करेंगे क्योंकि एक बार फिर से मैनेजमेंट को तब्दील करने का फैसला
राहत। बहुत ज्यादा फैसले जो हैं इस तरह तब्दीली से प्लेस पे काफी असरअंदाज होते हैं, क्योंकि देखिए जब भी एक कॉम्बिनेशन के साथ ही आपकी कहीं किसी भी जो टीम का कॉम्बिनेशन अगर डिस्टर्ब हो तो वो टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। अब यहां पर ये भी होना चाहिए कि प्लेयर्स जो हैं उनकी भी थोड़ी राय ले लेनी चाहिए कि आखिर उनके मसाइल क्या हैं। देखिए मैनेजमेंट लेवल पर तो आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्लेयर अगर आप उनसे पूछा जाए कि कहां कारकर्दगी में फुकदान आ रहा है और प्लेयर जो है वो क्या डिमांड करना चाहते हैं, तो यही मेरे ख्याल में बेहतर होगा।
सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ये मशवरा दिया है कि बार बार जो तब्दीलियां हैं इससे एक तो हम आहंगी पैदा नहीं हो रही और प्लेयर भी जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, जिसमें पीएचएफ के सदन हैं खालिद खोखर हैं और शहबाज सीनियर हैं, जो जिन्होंने हम एक दफा स्टूडियो में ज्वाइन भी किया था, ये एजाज हमें हासिल हुआ था
उनके
साथ प्रोग्राम करने का। चीफ सिलेक्टर हैं हसन सरदार हैं, अयाज महमूद हैं, सलाहुद्दीन हैं और कमर इब्राहिम हैं, इनके साथ और बहुत सारे नाम जुड़े हैं जिन्होंने ये कहा है कि बार बार तब्दीलियां जो है इस खेल में बेहतरी नहीं लेकर आ सकती, बल्कि इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है कि इस तरह के ग्राउंड्स बनाए जाएं और इस तरह के कैंप्स लगाए जाएं जहां पर जो प्लेयर्स हैं उनके मसाइल को दूर किया जाए और फिर उनको फुल टाइम दिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए।
बिल्कुल राहत, बहुत ज्यादा मतलब अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे कौमी खेल के साथ कि क्यों इसको इतनी ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जी।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी जी कामरान, जी जी कामरान कहिए क्या कहेंगे।
जी नमान भाई ने टॉप 10 तो बहुत अच्छा से किया, लेकिन मुझे हमेशा कोई ना कोई इतराज आ ही जाता है। आज जब नमान भाई ने प्रोग्राम शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि शायद पहला नंबर शास्त्री को देते हैं या टॉनी ग्रेट को देते हैं, देखते हैं। तो दोनों ही मेरे फेवरेट है, मेरे फेवरेट आज के भी वर्ड में उनका बड़ा नाम है, तो उन दोनों को लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया बड़े कमेंटेटर से। दानू वो अभी तो अभी भी जिंदा है, लेकिन टॉनी साहब शॉट हो गए।
अच्छा कामरान, एक कामरान एक बात जरूर मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपने कहा ना कि कोई ना कोई कमी रह जाती है, नुमान जब भी किसी लिस्ट को तैयार करते हैं वो अपनी पसंद या नापसंद से तैयार नहीं करते। आप सोशल मीडिया पर जाके देखिए कि उसको पूरी वर्ल्ड जो है वो तैयार करती है, मुख्तलिफ माहरीन उसके अंदर शामिल होते हैं, उसके बाद वो लिस्ट जो है वो जारी की जाती है और फिर हमें वो मिलती है और हम उसको शामिल करते हैं।
देखिए
मुझे नुमान भाई मैं समझता हूँ, मैं अपने पसंद की बात
जी जी
मैं समझता हूँ, टॉनी का और शास्त्री का बहुत बड़ा नाम है ना एज ए कमेंटेटर। बिल्कुल टॉनी का मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, शास्त्री ने चलो इतना ज्यादा बाहर का तो बोर्ड में कोई अभी मिल जाता अभी जिस तरह वो है
जी जी आपकी सही
कर पा रहे, लेकिन में बड़ा नाम है टॉनी का।
बात ये है कामरान के अगर देखें जब हम इस लिस्ट को मैं खुद भी जब रिपेयर कर रहा होता हूँ आप लोगों के लिए बना रहे होते हैं तो मेरे जहन में भी कुछ बातें होती हैं कि मैं जो आप लोग ज्यादा जिनको पसंद करते हैं उन्हें ऐड कर लूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जिन माहरीन ने बनाई है उसी तरह से मैं आपकी खिदमत में पेश करूं तो ये ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि देखिए मैं इसमें पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को भी ऐड कर सकता था कि इसमें वकार यूनुस भी हैं, गो के वकार जो है वो एज ए प्लेयर तो बहुत जबरदस्त है लेकिन कमेंट्री के स्टाइल के हवाले से वकार जो है टेक्निक एक्सपर्टीज में तो वो शामिल होते हैं, लेकिन कमेंट्री के हवाले से वकार यूनुस है, इवन रमीज राजा भी बहुत नो डाउट बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, लेकिन जो टॉप 10 की लिस्ट में उसमें नाम वो शामिल नहीं थे। तो जो लिस्ट मैंने देखी है एज इट इज उसमें भी मैंने उन्हीं को शामिल किया, और रवि शास्त्री का भी आपने जिक्र किया वो भी है, इसके अलावा संजय मंजरेकर भी अच्छी कमेंट्री करते हैं, तो वो नाम काफी सारे हैं।
जी पानी को शास्त्री को आपकी तरह रेट करते हैं को, चलो
जी दोनों नो डाउट बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। मैंने आपसे कहा ना कमेंटेटर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, तवील फहरिस्त है, लेकिन जो कमेंटेटर्स की लिस्ट दी गई उसमें उनका नाम नहीं था, तो वो प्रिपेयर करते हुए यही बात होती है कि लिस्ट में इस तरह से रद्दो बदल जो है उसे कुछ मुनासिब नहीं समझा जाता कि जो माहरीन ने लिस्ट दी है उसमें अगर हम रद्दो बदल करें तो शायद वो उतना अच्छा एंजॉय नहीं हो सकेगा और शायद उनके जिसे कहते हैं ना कि जो उनकी वोटिंग है उससे शायद फिर वो इंसाफ ना हो सके, लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि शास्त्री को ऐड होना चाहिए था इस लिस्ट में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
शुक्रिया कामरान, कल आपने जो जवाब दिया था वो दुरुस्त था। चले जी अंडर 19 के हवाले से नुमान बात करेंगे। ये बताइएगा जी।
अंडर 19 में जी एक बिग न्यूज ये है कि भारत की टीम आउट क्लास हो गई है जी। भारत की टीम को शिकस्त हुई है और बांग्लादेश ने भारत की टीम को अंडर 19 एशिया कप के जिसे हम कहते हैं क्वार्टर फाइनल स्टेज पर हरा दिया है। और अब पाकिस्तान जी बड़ा अपसेट मैच हुआ है। और आपको थोड़ा सा बताते चले कि ग्रुप ए का ये मुकाबला 32 ओवर्स की इनिंग तक महदूद कर दिया गया था। भारत ने पहले जी बारिश की वजह से भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 187 रन बनाए और बांग्लादेश ने यह हदफ बड़ा हैरान कन रिजल्ट है रहा था। आप भी सुनिए कि 28 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ बांग्लादेश ने पूरा कर लिया और पना घोष ने 81 और तौहीद ने 48 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ।
जारहाना क्रिकेट का रूप धारती जा रही है बांग्लादेश
जी
जो है।
और इसमें जो सबसे ज्यादा हमारे फैंस के लिए चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त जो अंडर 19 की इंडियन टीम की कोचिंग कर रहे हैं वो राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। तो ये अब उनके लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान में हम लोग जो हैं क्रिकेट को इतना ज्यादा लाइक करते हैं, वहां पर अब भारत में भी ये चीज बड़ी अब इस पे क्वेश्चंस अराइज होंगे कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, जो कि खुद एक इतने अच्छे ब्रिलियंट कैप्टन भी रहे हैं, ब्रिलियंट प्लेयर भी रहे हैं, भारत को ये बैक टू बैक मैचेस में शिकस्त हुई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि भारत को जो पूल मैच में शिकस्त हुई थी वो भी एक अपनी जगह एक बड़ा सवाल था। और अब इस मैच में जो शिकस्त हुई है उसने भी भारत की जो परफॉर्मेंस है उस पर काफी सवालिया निशान जो है वो उठा दी
जी। नेशनल T20 मैच की जानिब चलेंगे हम क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। फैसलाबाद और लाहौर व्हाइट्स जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और देखते हैं कि क्या अभी स्कोर कहां तक पहुंचा है क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैच को रोक भी दिया गया था बारिश की वजह से। और इसके बाद जो मैच होगा उसके हवाले से भी आपको बताते चले कि दोनों कराची व्हाइट्स और लाहौर ब्लूज का मुकाबला भी आज होगा और लाहौर व्हाइट्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। ये आपको बताएं हम कि फैसलाबाद को बैट की दावत दी है और फैसलाबाद जो है इस वक्त बैट कर रहा है 29 पर 2 आउट हैं और मैच आगे नहीं बढ़ा, बारिश की वजह से रोक दिया गया है। 5 ओवर्स का खेल अभी तक मुकम्मल हुआ है और 29 रन हैं, 2 खिलाड़ी उसके आउट हैं। नुमान बताइएगा कि किन 2 खिलाड़ियों को आउट किया गया है।
राहत फैसलाबाद और लाहौर व्हाइट्स का जो ये मैच था इसमें जो 2 विकेटें जो हासिल की हैं जी वो अगर हम बात करें बैटिंग के हवाले से तो फैसलाबाद के साहिबजादा फरहान 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इनके साथ साथ गौहर अली 0 पर आउट हुए, आसिफ अली 1 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और वहाब रियाज ने जी सोएब मकसूद को आउट किया, 13 रन उन्होंने स्कोर किए
जी। सामिन इसी के साथ स्पोर्ट्स वर्ल्ड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कुछ फरमाइशें हम तक पहुंची थी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में उनको शामिल किया जाए। और आज के प्रोग्राम के पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद खुर्शीद, कोऑर्डिनेटर थे मजहर जावेद, प्रोग्राम इंचार्ज थे जफर इकबाल, निगराने आला थे जावेद खान जुदून। सभी सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हमारा साथ दिया। इसके साथ ही अपनी मेजबान राहत खान नुमान खान को कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, अल्लाह ने के बाद। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बजने वाले हैं। चंद ही लम्हों के बाद आप सुनेंगे खबरें। ताजा तीन खबरों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं न्यूज स्टूडियो।